के बुलेटिन में गायिका ओलिविया न्यूटन जॉन के लिए की गई श्रद्धांजलि, जिनका 73 वर्ष की आयु में हो गया निधन। FBI ने डोनाल्ड ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित घर पर मारा छापा और खेल में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया सबसे ऊपर। आज के समाचार में विक्टोरिया के प्रीमियर डैनियल एंड्रूज डेम ओलिविया न्यूटन जॉन को श्रद्धांजलि देने वाले कई लोगों में से हैं। ओलिविया न्यूटन जॉन का 73 वर्ष की आयु में अमेरिका में निधन हो गया है। ब्रिटिश मूल की ऑस्ट्रेलियाई गायिका ने अपने 5 दशक लंबे करियर में कई ग्रैमी पुरस्कार जीते और 1978 में जॉन ट्रावोल्टा के साथ हिट म्यूजिकल ग्रीस में सैंडी की भूमिका निभाते हुए लोकप्रियता प्राप्त की। 30 वर्षों तक उन्होंने स्तन कैंसर से संघर्ष किया और मेलबर्न में ओलिविया न्यूटन जॉन कैंसर वेलनेस एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना की। डैनियल एंड्रूज का कहना है कि दिवंगत गायिका एक प्रभावशाली विरासत छोड़ गई है।
A person of grace, a person of such energy, vitality. She took her cancer journey and used that to save lives and change lives. And that's just a deeply impressive thing.
ओलिविया न्यूटन जॉन द्वारा स्थापित कैंसर केंद्र का संचालन ऑस्टिन हेल्थ करता है। ऑस्टिन हेल्थ के मुख्य कार्यकारी एडम हॉसबर्ग का कहना है कि ओलिविया न्यूटन जॉन का मानना था कि केंद्र को कैंसर के इलाज के अलावा और भी सेवाएं देने की जरूरत है।
म्यूजिक थेरेपी, एक्सरसाइज, फिजियोलॉजी, मसाज, योगा, सपोर्ट ग्रुप्स, इवन फाइनेंशियल एडवाइस, एंड दैट रियली वाज पायनियरिंग इन टर्म्स ऑफ दैट होलिस्टिक व्यू ऑफ अ पेशेंट्स नीड्स एंड इंश्योरिंग दैट All of that supports wrapped around the patient and their family during their cancer journey.
उधर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनके फ्लोरिडा स्थित घर पर FBI की छापेमारी की निंदा की है। उनके बेटे का कहना है कि रेड आधिकारिक राष्ट्रपति रिकॉर्ड को संभालने से संबंध रखती है। एरिक ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को बताया कि उनके पिता की मारेलेगो एस्टेट में तलाशी वारंट का निष्पादन नेशनल आर्काइव्स के रिकॉर्ड को संभालने की जांच से संबंधित है। अमेरिका में फेडरल कानून अनधिकृत स्थानों पर क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स यानी कि वर्गीकृत दस्तावेजों को हटाने पर प्रतिबंध लगाता है और इसके चलते 5 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि छापेमारी एक बहाना है ताकि उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए फिर से खड़े होने से रोका जा सके। एसोसिएटेड प्रेस की मिशेल प्राइस का कहना है कि फरवरी के महीने में ट्रंप के आवास पर 15 पेटी भरकर गोपनीय सामग्री पाई गई थी।
We don't know for sure what they were looking for, what they had taken, but we know that there had been In the past, 15 boxes of classified material had been found at Mar-a-Lago. That discovery was referred to the Justice Department after the National Archives found that material. So it's possible that they were looking for any additional classified material that the former president may have taken with him to his residence.
New South Wales ke koshadhyaks Matt Keen ko sarvasammati se party ka vote jeetne ke baad Liberal Party ka upneta niyukt kiya gaya hai. वे पिछले हफ्ते स्टुअर्ट एयर के इस्तीफे के बाद आता है जब उन पर जॉन बारेलारो की न्यूयॉर्क स्थित व्यापार भूमिका में नियुक्ति में भागीदारी का इल्जाम लगाया गया था। श्री कीन का कहना है कि वे नई भूमिका के लिए बहुत उत्सुक हैं।
I'm so humbled to have been endorsed by my colleagues to serve as the deputy leader of the New South Wales Liberal Party. I joined the Liberal Party almost 20 years ago, and it's because I believe in its cause and I believe in its values. Its values of individual freedom, enterprise and opportunity for every single person, regardless of their background, where they live or who they are.
ग्रीन्स का कहना है कि वे संसद के लिए एक स्वदेशी आवाज की स्थापना के अलावा एक संधि और एक सच्चाई बताने वाले आयोग को लागू करने के लिए फेडरल सरकार पर दबाव डालेंगे। स्वदेशी प्रवक्ता लिडिया थॉप का कहना है कि संधि पर बातचीत की जरूरत है।
Treaty is the only way that will truly mature the nation. And a voice to Parliament, the Makarrata Commission, they all fall under a treaty. So I'm excited to be a part of that, but also to bring back the old voices that have been calling for treaty for not 5 years, but for 5 decades.
उधर ब्रिस्बेन में 49 वर्षीय व्यक्ति पर एक माँ और बेटे को चाकू मारकर हत्या करने का आरोप लगाया गया है। 000 कॉल का जवाब देने के बाद पुलिस ने उसे स्ट्रेटन में अपने घर के दरवाजे पर जख्मी हालत में पाया। उन्हें घर के अंदर एक 47 वर्षीय महिला और उसके 20 वर्षीय बेटे के शव भी मिले। डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट एंड्रयू मैसिंगम ने बताया कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है उसके साथ पीड़ित महिला कुछ महीनों से रिलेशनशिप में थी और वारदात के समय सभी लोग उस घर में रह रहे थे। उन्होंने बताया है कि उस व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया है और उसे आज यानी 9 अगस्त को बिस्तर पर ही सुनवाई का सामना करना पड़ेगा।
The male person will be subject to a bedside court hearing this morning. He has undergone some surgery overnight, which may delay that process somewhat. But as I said yesterday, he is suffering some injuries that we say occurred during the course of the attack. I can also confirm that the weapons that were located yesterday that were described as two-bladed weapons are in fact a long-handled kitchen knife.
फिलहाल इस मामले में घरेलू हिंसा के कोई ऑर्डर्स नहीं है। ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में हाउसहोल्ड स्पेंडिंग यानी घरेलू खर्च पिछले साल की समान अवधि की तुलना में जून में 10.2% से बढ़ गया है। आंकड़ों से पता चलता है कि होटल, रेस्टोरेंट और कैफे जैसे कोविड-19 से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में खर्च अब पूर्व महामारी के स्तर पर लौट आया है। उधर पेट्रोल की ऊंची कीमतों और हवाई यात्रा की मांग के कारण परिवहन खर्च में 23% की वृद्धि हुई है। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए सरकार की नई रणनीति के तहत विक्टोरिया के लोगों के लिए 12 अगस्त से N95 मास्क मुफ्त में मिलेंगे। अगले 4 से 6 सप्ताह में परीक्षण स्थलों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और सार्वजनिक परिवहन पर 3 मिलियन से अधिक मास्क उपलब्ध होंगे। विक्टोरियन स्वास्थ्य मंत्री मैरियन थॉमस सरकार की पहल का लाभ उठाने के लिए विक्टोरियन लोगों को प्रोत्साहित कर रही हैं।
We'll get the masks out to community health services, through our PTV networks, at GP respiratory clinics and indeed at our testing sites. And I encourage all Victorians to take advantage of this initiative.
उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ज़ापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर गोलीबारी के बाद रूस के खिलाफ परमाणु प्रतिबंधों का आह्वान किया है। माना जा रहा है कि इससे चेर्नोबिल से 10 गुना बड़ी तबाही का डर पैदा हो गया है।
Russia will not consider words and worries. New sanctions are needed against the terrorist state and the entire Russian nuclear industry for creating the threat of a nuclear disaster. The world should not forget about Chernobyl and should remember that the Zaporizhia nuclear power plant is the largest in Europe. The Chernobyl disaster is an explosion in one reactor. Zaporizhia nuclear power plant is 6 power units.
दोनों पक्षों ने परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर गोलाबारी के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया है। अब भारत से कोविड मामलों की खबर। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 12,751 नए मामले सामने आए हैं और फिलहाल रिकवरी रेट 98.51% पर है। आंकड़ों के अनुसार इस अवधि में सक्रिय कोविड-19 मामलों की संख्या 131,807 हो गई है। मुद्रा दर की जानकारी में इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक अमेरिका में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत आज 70 सेंट्स है और भारत में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत 55.54 रुपये हो गई है। खेल समाचार में 11 दिनों के खेलों के बाद 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का समापन समारोह हो चुका है और बर्मिंगहम में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज समेत कुल 61 पदक जीते हैं। भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। उधर ऑस्ट्रेलिया ने 67 स्वर्ण मेडल्स, 57 रजत और 54 कांस्य पदक जीते हैं। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने 178 मेडल जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। और आपको याद दिला दें कि ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया राज्य विभिन्न शहरों में 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। और अब कल के मौसम का पूर्वानुमान। पर्थ में आंशिक बादल के आसार, वहां का न्यूनतम तापमान 7 और अधिकतम तापमान 17 डिग्री तक जाएगा। एडलेड में भी कल बरसात के आसार और वहां का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहेगा और अधिकतम तापमान 15 डिग्री तक जाएगा। मेलबर्न में बादल छाए रहेंगे और यहां का न्यूनतम तापमान 2 और अधिकतम 15 डिग्री तक रहेगा। कैनबरा में सुबह के कोहरे के बाद आंशिक रूप में बादल छाए रहेंगे, वहां का न्यूनतम तापमान -3 और अधिकतम तापमान 14 डिग्री। सिडनी में कल एक या दो बौछार की संभावना, वहां का न्यूनतम तापमान 9 रहेगा और अधिकतम 17 डिग्री तक जाएगा। ब्रिस्बेन में आंशिक बादल के आसार, वहां का न्यूनतम तापमान 9 और अधिकतम 21 डिग्री। डार्विन में ज्यादातर धूप खिली रहेगी, वहां का न्यूनतम तापमान 21 और अधिकतम 32 डिग्री तक जाएगा। और वहां भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल बादलों का साया रहेगा और वहां का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री और अधिकतम तापमान होगा 35 डिग्री। मौसम की जानकारी के साथ ही आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।